जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद,
जय गौर प्रेमानंदे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। इतना बड़ा आदमी बैठा है, स्मॉल इंट्रोडक्शन क्या करेगा। हरे कृष्णा, ये सब जानते हैं हम। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र गौर नेताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र श्री प्रभुपाद के चरणों में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका स्कान एन वीसीसी में स्वागत है। चौथे स्कंद भागवत के तीसवां अध्याय चल रहा है। चौथा स्कंद भागवत का 31 अध्याय है मेरे ख्याल में चौथे स्कंद में, और चार विभाग हैं। पहले 7 अध्याय धर्म और उसका मुख्य अंग है यज्ञ, वो दक्ष का यज्ञ, और उसमें शंकर महाविष्णु का अपराध और यज्ञ संपूर्ण नहीं होना। 5 अध्याय उसके बाद है अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज, उसका चरित्र, और 11 अध्याय में सबकी कामना पूरी करने वाले पृथ्वी महाराज का चरित्र है, और 8 अध्यायों में प्राचीन बहित और प्रचेताओं का चरित्र है। ये मुक्ति का ये चार दिव्य साधन है इस चौथे स्कंद में। तो हम प्रचेताओं का जो दिव्य चरित्र है उसके विषय में 30वें अध्याय में श्रवण कर रहे हैं। ये प्रचेता 10 प्राचीन बरहित के पुत्र हैं, और प्राचीन बरहित ध्रुव वंश के एक कर्मठ राजा है। तो प्राचीन बरहित ने अपने पुत्रों को कहा कि राज करना है बेटा, लेकिन राज करने से पहले तपस्या कर लो। पहले तपस्या करके अपने आप को तपो दिव्यम पुत्र का, पहले शुद्ध हो जाओ फिर आके राज करना। तो तपस्या करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में भगवान शंकर ने कृपा करके उनको रुद्र गीत भगवान विष्णु को प्रसन्न करके प्राप्त करने का दिया और वो समुद्र के अंदर जाके तपस्या करने लगे। और तपस्या करने लगे तो तपस्या से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया। और दर्शन दिया तो भगवान विष्णु का कल वर्णन सुन रहे थे कि अष्टभुजाओं में भगवान आए और माला भगवान को वैजयंती पहनी हुई थी और लक्ष्मी वक्षस्थल पे थी और भगवान ने बोलना शुरू किया। तो आज आठवें श्लोक से लेकर कोई 20-21 श्लोक तक भगवान बोलते हैं। उसके बाद मैत्रेय जी बीच में कहते हैं कि अप्रचिता प्रथा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद 40-42 श्लोक तक प्रचिताओं की प्रार्थना है। तो पहले भगवान की वाणी है और फिर भक्तों का उस वाणी के अनुमोदन में उसकी भगवान की प्रार्थना नमस्कार। और भगवान ने जो आज के श्लोक में कहा है कि मुझसे वर मांग लो, वो कौन सा वर मांगा है, वो प्रचेताओं की प्रार्थना में है। तो आइए आठवें श्लोक का पाठ करते हैं। श्री भगवान वाच वरम वृणीध्वं भद्रं वो योयं मे नृपनन्दनाः स्वहार्देण अपृथग्धर्माः तुष्टो अहं सहृदेन वः। श्री भगवान उवाच वरं वृणिध्वं भद्रं वो योयं मे नृपनन्दनाः सुहार्देण अपृथिग धर्मास् तुष्टो अहम स्वहृदे नवः। श्री भगवान उवाच वरं वृणिध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सुहृदेण अपृथिग धर्मास् तुष्टो अहम सुरधे नवः। पाठ कीजिए। श्री भगवान उवाच वरं वृणिधं भद्रं वो योयं मे नृपनन्दनः स्वहृदेन पृथग् धर्मास् तुष्टोऽहं स्वहृदे नवः। श्रीभगवान उवाच वरं वृणिध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सुहार्देन पृथग् धर्माः तुष्टोऽहं स्वहृदे नवः। श्रीभगवान् उवाच वरं वृणिधं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः स्वहृदेन पृथग् धर्माः तुष्टोऽहं स्वहृदे नवः। माचरि मानवाच श्री योयं मे नृपनन्दनाः सुहृदेन पृथग् धर्माः तुष्टोऽहं सुहृदे नवः। श्री भगवान वाच का मतलब ये श्री भगवान के शब्द हैं, ये शब्द श्री भगवान के हैं और भगवान दर्शन दे रहे थे और प्रचेताओं को संबोधन कर रहे हैं। वरम वृणिध्वं भद्रम वो यूयम नृपनन्दनः। नृपनन्दना का मतलब राजपुत्रो, राजपुत्रो आपका कल्याण हो, भद्रम वो आपका कल्याण हो। अभी कल्याण किसका कब होता है? जब भगवान का दर्शन होगा तो कल्याण हो गया ना। इसका मतलब भगवान कहता आप बहुत भाग्यशाली हैं, जिसके पास धन है वो धनवान होता है, जिसको भगवान मिलता है वो भाग्यवान होता है, कि आप बड़े भाग्यवान हो। संसार में लोग धन चाहते हैं, भगवान बहुत कम लोग चाहते हैं। तो भद्रम वो आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। और फिर कहते हैं वरम वृणिध्वम, कुछ वर मांग लो, कुछ वर मांग लो। ये भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब भद्र हो गया, भद्रम हो गया, कल्याण हो गया, तो फिर वर की क्या जरूरत है? स्वयं भगवान मिला तो फिर वर की जरूरत क्या है? ये परीक्षा ले रहे हैं कि कच्चे हैं कि पक्के हैं। वर मांग लो, क्योंकि प्रायः तपस्या लोग कुछ मांगने के लिए करते हैं। तो भगवान कहते हैं आखिर तपस्या किए तो कुछ मांगने के लिए ही किया होगा ना, तो मांग लो। फिर कौन सी योग्यता है मांगने की? भगवान से मांगने के लिए कोई योग्यता होनी चाहिए ना। तो पहले तो भगवान के तुष्ट हो, हम मैं संतुष्ट हो गया। भगवान का संतुष्ट होना, गुरु का संतुष्ट होना, ये असल में भक्त के जीवन का लक्ष्य है। हम कार्य क्यों कर रहे हैं? कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले संकल्प करना चाहिए हरि गुरु वैष्णव प्रसन्नता तुष्टि अर्थे। ये कार्य जो करते हैं इसका करने का हमारा उद्देश्य हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता, उनकी तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तुष्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं आपकी तपस्या से। नहीं, विशेष रूप से आपके अंदर एक विशेषता है, वो है अपृथक धर्मा। अपृथक धर्मा का मतलब आपके विचारों में कोई भी भेदभाव नहीं है। वो अपृथक धर्मा के लिए दूसरा शब्द है समान धर्मा। आप समान धर्मा हो, और प्रभुपाद जी अपृथक धर्मा का अर्थ लिखते हैं ऑक्यूपेशनल, सेम ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। लेकिन फिर लिखते हैं वो क्या है? भक्ति। तो इसका मतलब है अतुष्ट अपृथक धर्म किसकी बात कर रहे हैं? शरीर के धर्म की बात कर रहे हैं कि आत्मा के धर्म की बात कर रहे हैं? आत्मा के धर्म की बात कर रहे हैं। आत्मा का धर्म है भक्ति। आप सब एक ही केंद्र के ऊपर केंद्रित है। अपृथक धर्म का मतलब है कि केंद्र एक। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, बच्चे स्कूल में पलकार होती है ना, जिसे गोल निकालते हैं, उसका अगर सेंटर एक होगा, कितने भी गोल निकालो एक गोल दूसरे को गोद में लेगा, कोई किसी को काटेगा नहीं। तो आप सब लोगों का केंद्र एक है भगवान, इसलिए आप एक दूसरे के वो काटते नहीं हो, एक दूसरे के पृथक अलग अलग अलगाव नहीं है, आप में कोई भी सेपरेशन नहीं है। और अगर आप केंद्र को अलग कर दो और सुई को फिर घुमाओ तो गोल नहीं, गोल एक दूसरे को काटेगा, डिजाइनें बनाएंगी सबको काटेंगे, तो वो हो गया पृथक धर्म। पृथक धर्म का मतलब केंद्र बदल दो, तो केंद्र आपका एक है। कल हमारे रुक्मणी चरण कह रहे थे वो केंद्र एक है कि आप परंपरा में जुड़े हुए हो, और परंपरा से भगवान का परिचय कराया जाता है। परंपरा शुरू होती है भगवान से, तो भगवान से परिचय कराया जाता है, तो हमारा केंद्र एक भगवान है। और दूसरे दो, एक और शब्द दो बार आया है, सुहृदेण और सुहृद। वैसे प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में लिखा है आपकी मित्रता, फ्रेंडशिप लिखा है, और अन्य स्थानों पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मित्रता का मतलब है आप मेरे काम आओ, मैं आपके काम आऊंगा। रिश्तेदारी का मतलब है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन सुहृद इनसे अलग है। सुहृद का मतलब है हर हाल में मैं आपका शुभचिंतक हूं, आप कुछ भी करो मैं आपका शुभचिंतक हूं। तो सुहृद एक तो सीना ठोक के भगवान कहते हैं सुहृद सर्वभूतानां, एक तो भगवान सुहृद होते हैं सबके। दूसरे गुरुदेव सबके सुहृद होते हैं, कैसे भी शिष्य हो लेकिन गुरु उसका हित ही चाहता है। प्रभुपाद जी अपनी चिट्ठी में सबको लिखते थे, यू आर एवर वेल विशर, इसका मतलब सुहृद। तीसरा, संसार में माता सुहृद होती है अपने बच्चे के लिए, उसके सुख के लिए कोई भी कष्ट सह सकती। तो इनमें सुहृदय न मतलब आपका भक्ति के विषय में कोई मतभेद नहीं है, आप एक दूसरे का सहायक हो। यहां सुहृद का मतलब होगा कोऑपरेशन, आप एक दूसरे के सहायक हो, एक दूसरे का हित करते हो। ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर ये है, भौतिक जगत में कॉम्पिटिशन है और आध्यात्मिक जगत में कोऑपरेशन है, ये दोनों में अंतर इतना है। वहां कोऑपरेशन है, वहां सब एक दूसरे के सुहृद हैं, एक दूसरे को भगवान की सेवा में अगर सर लगाने के लिए सहायता करते हैं, और संसार में एक दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। एक टीचर बता रहा था, एक बलिष्ठ क्लास में लड़का था, उसको दबाने लगा तो आस्ते आस्ते जोर टीचर से वो नीचे जाने लगा, फिर धरती पे गया तो टीचर भी नीचे उसके साथ, नीचे बैठना पड़ा ना दबा रहा था, फिर उठ के खड़े होके कहने लगा, देखो किसी को गिराओगे तो तुमको भी गिरना पड़ेगा, तुमको भी उतना ही नीचे जाना पड़ेगा भाई, किसी को गिराओगे तो तुमको भी नीचे ही जाना पड़ेगा ना, तो आप समझो कि दूसरे को गिरा रहे हो तो आप तो अपने आप गिर रहे हो, और दूसरे को उठाओगे तो आप भी उठोगे ऊपर। तो दूसरे को उठाना ये सुहृद है, और दूसरे को गिराना जो है ये कॉम्पिटिशन है। दुनिया में कॉम्पिटिशन है, आध्यात्मिक जगत में और कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोऑपरेशन है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो वरम वृणिधम, मैं मुझसे वरम मांगो, भद्रम वो आपका कल्याण हो, यूयम में मेरे से आप राजपुत्रो, सुहृदेना आप एक दूसरे के सहयोगी हो, शुभचिंतक हो, आपका केंद्र एक है और आप समान धर्मा हो, आपका लक्ष्य एक है भगवान की प्रसन्नता, तुष्ट हम मैं संतुष्ट हो गया हूं, सुहृदेन वह आपके इस सुहृदय को देखकर। आगे कहेंगे कि आपने पुत्र की आज्ञा पालन किया इसलिए मैं संतुष्ट हुआ हूं, अपने पुत्र, और आपने शंकर जी को प्रसन्न किया इसलिए तुष्ट हुआ हूं, तो ये आपने असल में सबको प्रसन्न किया है, ये बहुत बड़ी तपस्या है असल में भाई। शरीर की तपस्या क्या लिखा है गीता में, देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम आर्जवम, आर्जवम देव द्वेज गुरु प्रज्ञा, इसका मतलब शरीर से भगवान की, देव द्वेज ब्राह्मण की, गुरु की और बड़ों की, चाहो न चाहो लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। आपने ये सारे कार्य किए, ये शरीर की तपस्या की है आपने, और आपस में जो आपने काम किया है ये सुहृदय का किया है, तपस्या भी की है और सुहृदय का कार्य भी किया है, इसलिए मैं आपसे संतुष्ट हूं, आप मुझसे वर मांग लो। क्या वर मांगते हैं ये आप जब श्लोक आएगा तो इसको सुन के देखना और ये सीखना कि भगवान वर मांगने को कहे तो क्या मांगना चाहिए। अब इस श्लोक का श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अति अधिक प्रसन्न हूं। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति, ये समान धर्मा का, अपृथक धर्मा का अर्थ प्रभुपाद ने लिखा है भक्ति, अपृथक धर्मा भक्ति क्यों है, ज्ञान क्यों नहीं है, अपृथक धर्मा योग क्यों नहीं है, कर्म क्यों नहीं है, उनका अधिकारी होता है, सब नहीं कर सकते लेकिन भक्ति को सब कर, सबको करने का अधिकार है। जैसे राजा की सेवा है, झाड़ू निकालने वाले से लेकर मंत्री तक सब कर सकते हैं, ऐसे भक्ति सब कर सकते हैं भगवान की, चारों वर्ण भक्ति कर सकते हैं, चारों आश्रम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए ब्राह्मण का होना जरूरी है और गुरु के आश्रम में जाना जरूरी है, और यज्ञ करने के लिए भी कोई यज्ञ केवल ब्राह्मण करते हैं, वाजपेयी यज्ञ ब्राह्मण को करना है, अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय को करना है, तो उसमें समान धर्मा नहीं है, वो पृथक धर्मा हो जाएंगे। और कर्म में तो सबके कर्म अलग वर्णों के हैं, लेकिन भक्ति एक है जो समान धर्म है, जिसमें कोई अपृथक धर्म भक्ति में नहीं है, बाकी सब में अपृथक धर्म है, हर एक का धर्म अलग हो जाएगा। सिर्फ भक्ति ऐसी है जो समान धर्मा है या अपृथक धर्मा है, क्योंकि सब कर सकते हैं उसमें, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई देश का काल का किसी का भी उसमें विविधान नहीं है। तो भक्ति जो है वो है समान धर्म, एक ही कार्य में लगे हुए हैं, अपृथक धर्म। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं भद्रम्बु। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तो इस श्लोक के संस्कृत के शब्दों में प्रभुपाद जी के अनुवाद में एक शब्द भक्ति ही ज्यादा है, बाकी शब्द देखो कौन सा कहां पड़ा है। ऊपर श्लोक देखो और शब्दों को देख लो एक बार। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाचा, ठीक है, हे राजपुत्रो नृपनंदना, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूं, तुष्टो अहम सुहृदय न। ठीक है, तुम सभी एक ही कार्य है, अपृथक धर्मा, और सिर्फ अपृथक धर्मा की परिभाषा श्रील प्रभुपाद ने लिखा है भक्ति। एक शब्द ये प्रभुपाद का इस तात्पर्य में भाव है कि अपृथक धर्मा क्या है, भक्ति। और उसके बाद लिखा है मैं कल्याण चाहता हूं। भक्ति में लगे हुए हो, मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं। ये दोबारा लिखा है, ऊपर भी प्रसन्न लिखा है, नीचे भी लिखा है, तुष्टो अहम, मैं आपकी मित्रता से, आपके सौहृदय से प्रसन्न हूं। तो दो बार सौहृदय तो दो बार लिखा है और दो बार प्रसन्न लिखा है। और मैं तुमका कल्याण चाहता हूं भद्रम वो। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। वरम वृणिध्वम, ऐसे श्लोक पढ़ते समय दो चार मिनट अध्ययन करना चाहिए कि श्लोक में संस्कृत में शब्द कहाँ है और अनुवाद में प्रभुपाद ने कहाँ लिखा है, और उनका आपस में तालमेल आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा शब्द कहाँ पढ़ा है, तो इसका मतलब आपने समझ के पढ़ा। और ऐसे ही पढ़ गए तो इसका मतलब आप प्रभुपाद के इतने परिश्रम शब्दार्थ और इतना कुछ किया है उसका हमने विशेष लाभ नहीं लिया। विशेष लाभ का मतलब है ऊपर और नीचे देखो। उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि इस श्लोक के कौन से शब्द के ऊपर प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है। इसमें बहुत से शब्द पड़े हैं, वर मांगो इसके ऊपर भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं लिखा है प्रभुपाद ने तात्पर्य। मैं तुष्ट हूं इसके ऊपर भी नहीं लिखा है प्रभुपाद ने, तात्पर्य लिखा है एक शब्द के ऊपर, अपृथक धर्मा के ऊपर। सिर्फ एक शब्द के ऊपर ही प्रभुपाद का पूरा तात्पर्य है, अपृथक धर्मा। सुहृदय के ऊपर भी तात्पर्य में नहीं लिखा है प्रभुपाद ने। तो एक शब्द प्रभुपाद ने इस श्लोक में मुख्य लिया है और उसके ऊपर लिखा है, ऐसे लिखा है, चूंकि राजा प्राचीन भरित के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे। रूप गोस्वामी आ गया, मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, ये क्या है, अपृथक धर्म। मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, जो अनुवाद में भक्ति लिखा है उसको श्रील प्रभुपाद ने, यहां श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति लिखा। और कृष्ण भक्ति क्यों लिखा, विष्णु सामने खड़े हैं तो विष्णु का नाम नहीं लेके कृष्ण भक्ति प्रभुपाद ने क्यों लिखा, तो इसको कैसे आप भाई संतुष्टि पूर्वक उत्तर की कैसे दोगे। भागवत का परिभाष सूत्र है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो जो भी जहां मिले उसको कृष्ण के ऊपर ही आपको केंद्रित करना है, क्योंकि यही परिभाष सूत्र का परिभाषा ये होती है कि जहां भी जो आपको बिठाना हो कृष्ण के ऊपर ही उसको बिठाना है। तो सभी मिलकर, पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अति अधिक प्रसन्न थे। तो इससे तो ये घोषित हो रहा है कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, जो मिलकर कृष्ण भक्ति करते हैं। मिलकर कृष्ण भक्ति की परिभाषा क्या है? साधु संघ। मिलकर कृष्ण भक्ति की परिभाषा है साधु संघ। साधु संघ का मतलब मिलना, इसलिए मंदिर बनाया बनाया, नहीं तो जरूरत क्या थी मंदिर बनाने की, के समान धर्म एक धर्म साथ में पालन करने वाले सजातीय भक्त साथ रह सके, एक जगह रह सके, इसलिए बनाए गए। तो जब साथ मिलकर भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। साथ मिलकर भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, इसका मतलब साधु संघ। और सबसे दुर्लभ दुनिया में है साधु संघ। साधु संघ में रहकर भक्ति करना, राजा प्राचीन वर्णित के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे। पृथक पृथक जीव थे का मतलब वो इंडिविजुअल थे, हर एक इंडिविजुअल था, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। वो इंडिविजुअल होते हुए भी, पृथक पृथक होते हुए भी उनका केंद्र एक था, कृष्ण उनका केंद्र था। इसका मतलब है कि हम सब इंडिविजुअल हैं लेकिन हमारा केंद्र कृष्ण तुष्टि हो, कृष्ण प्रसन्नता हो, कृष्ण भक्ति हो, तो हम कहलाएंगे अपृथक धर्मः, समान धर्मः। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों की एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। प्रभुपाद जी सामान्य बात कर रहे हैं, शब्द की परिभाषा उनकी परिचिताओं की बात करके अब हम सब के लिए एक संदेश दे रहे हैं। अभी तक बात हुई परिचिताओं की, अब उससे हमें क्या सीखना है? ये भाग, ये पुराण जो है उसमें इतिहास है और इतिहास के साथ शिक्षा है, और इतिहास में केवल इतिहास है, जैसे रामायण आदि में केवल इतिहास, उसमें शिक्षाएं इतनी नहीं है। पुराण की विशेषता ये है, पुरातन इतिहास के साथ शिक्षाएं हैं। तो हमको शिक्षा क्या लेनी है? तब प्रभुपाद जी शिक्षा ये कह रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने, भगवान को प्रसन्न करने, परम ईश्वर को, परमेश्वर, ऊपर कृष्ण लिखा इधर परमेश्वर लिखा, अब दो कैसे हो जाएंगे? ईश्वर परम कृष्ण तो परमेश्वर हो गया ना, ईश्वर परम कृष्ण। अब मानो किसी और को बताना है तो परमेश्वर ऊपर कृष्ण नीचे क्यों लिखा था? वो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह कहे के उसके साथ जोड़ते, ये आपके दिमाग में ऐसे चलना चाहिए साथ साथ में, कि ये शब्द यहां है तो इसका उसके साथ कैसे जोड़ना है, कि ये कैसे हम समझ सक खुद समझें और कैसे दूसरों को समझाएं कि यहां परमेश्वर क्यों लिखा है। और परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा, अथवा का मतलब उसके लिए, उसके लिए भक्ति करने के लिए। परमेश्वर को प्रसन्न करना कैसे? भक्ति करने से प्रसन्न, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, बाकी किसी काम से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों भाई? दूसरे साधन है उससे प्रसन्न क्यों नहीं होते? होते हैं उनसे प्रसन्न? ज्ञानियों से प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते? उन ज्ञानियों से तो बिल्कुल नहीं होते हैं जो कहते हैं भगवान की आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, ना टांग नहीं, पांव नहीं, इसका मतलब भगवान लूला है, लंगड़ा है, काना है, तो ऐसे कोई भगवान की प्रार्थना होती है क्या? तो भगवान उनसे प्रसन्न होगा? हाँ। और ये जो कर्मी मंदिर में आते हैं और आते कहते हैं भगवान हमारे को धन दे दो, भगवान कहता है अरे लक्ष्मी मांग रहा है, मेरी पत्नी को मांग रहा है, तो क्या भगवान उनसे प्रसन्न होगा? हाँ, कर्मी से भगवान प्रसन्न होगा क्या? हाँ। और वैसे भी भगवत गीता में ज्ञानियों के लिए लिखा है बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत जन्म लेने पड़ेगा तो भगवान प्रसन्न थोड़ी होगा। और योगियों के लिए भी लिखा है अनेक जन्म संसिद्धिम, छठी अध्याय में है, बहुत जन्मों के बाद जब परम सिद्धि प्राप्त करेगा तब वो योगी मेरे को मानेगा। और भक्तों के लिए क्या लिखा है? समुद्रता मृत्यु संसार सागरावत भवामी निचरात पारत मई आवेश चेत, वह संसार सागर से मैं ऊपर से ही उठा लूंगा, उसको तो गीला ही नहीं होने लूंगा इसी जन्म में, अभी उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान जिसको प्रसन्न होंगे उसी को निकालेंगे, नहीं प्रसन्न होंगे तो रहे, जब निकलना है तब निकले। हाँ नहीं, और निकालने के लिए भगवान को किसी को समाज संसार सागर से चोटी की जरूरत होती है, क्योंकि डूबते को चोटी से पकड़ के निकालते हैं और बाकी चोटी रखते नहीं है तो उनको कैसे निकालें। नहीं इससे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हरिद्वार में लोग कह रहे थे कि जब कोई गंगा में डूबता है तो स्त्रियों को बचाना आसान है क्योंकि उसकी बड़ी चोटी है, आजकल की स्त्रियां मर जाती हैं क्योंकि उस बाल कटे हुए हैं, लेकिन चोटी वालों को बचाना आसान है, लेकिन आदमी के सर के ऊपर हाथ घुमाते हैं पकड़ने के लिए चोटी होती नहीं है तो हमारे हाथ में आता नहीं है, मर जाता है, तो चोटी वाले को बचाना आसान है। तो उनके चोटी नहीं है तो भगवान कैसे बचाएं बेचारों को, तो चोटी रखना भी जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति करने के लिए भगवान को प्रसन्न करना या भक्ति करना, दोनों को इंटरचेंजेबल वर्ड लिखा है। इसका मतलब भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्ति करनी, और भक्ति करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, बाकी किसी साधन से भगवान प्रसन्न नहीं होते, दे देते हैं लेकिन प्रसन्न नहीं होते। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, जीव में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है, जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। एकता का मतलब सौहृदय, एक दूसरे के शुभ चिंतक। मिथो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है कि एक दूसरे का सब शुभ चिंतन करें, मिथो धीह हा? क्या स्वस्ति स्तो विश्वस्य कलो मिथ, एक दूसरे की सब हित सोचें। तो भगवान की भक्ति करने के लिए मुख्य चीज क्या है, एकता होनी चाहिए। एकता नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, द्वेष। एकता के विरुद्ध शब्द क्या है, भिन्नता अलग। तो एक श्लोक एकता के लिए कौन सा याद आए जल्दी में आना चाहिए, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखाय अनंता बुद्धि व्यवसाय नाम, ये बोलना चाहिए आना चाहिए। तो ये एका एका एक बुद्धि एक भगवान के ऊपर टिकनी चाहिए, अलग जगह पे नहीं लगानी चाहिए। सब एक दूसरे का हित चाहें तो वास्तविक एकता है। वास्तविक एकता भक्ति के लिए, वास्तविक एकता चाहिए। तो वास्तविक तो इसका मतलब तो एकता नहीं है तो क्या है, भिन्नता है, द्वेष है। इसलिए मेरे को याद जो आ रही थी, ये बात याद आ रही थी, द्रु महाराज जब अपनी माता सुनीति से मिलकर भगवान को पाने के लिए जंगल जा रहे थे तो माता ने एक श्लोक की शिक्षा दी थी, बेटा अपनी मासी स्टेप मदर सुरुचि के लिए हृदय में अगर द्वेष ले जाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा। अगर इसके लिए आपके हृदय में द्वेष भाव है तो भगवान नहीं मिलेगा, ये मां कह रही थी। इसका मतलब तुम वो निकाल के फिर जाओ तो भगवान मिलेगा। और दूसरा शब्द इसके लिए क्या होना चाहिए, निर्मत्सराणाम सताम। भक्त कैसे होते हैं, 100% प्योर। निर्मत्सराण का प्रभुपाद का शब्द का अर्थ क्या है, 100% प्योर। 100% प्योर होंगे तो किसी से कोई द्वेष करेगा नहीं, अद्वेष्ट सर्वभूताना, ये भक्त का पहला लक्षण। तो समान धर्मा के लिए मुख्य क्या करना चाहिए, एकता चाहिए और वास्तविक एकता चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक एकता नहीं होती तो एक व्यवहारिक एकता होती है, वो असल में एकता नहीं है। वास्तविक और व्यवहारिक दो शब्द हो जाएंगे ना उल्टा, एक वास्तविक एक व्यवहारिक। तो व्यवहारिक का भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है, भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है, मतलब वास्तविक एकता भौतिक जगत में नहीं हो सकती। व्यवहारिक एकता करते हैं तो उसका उदाहरण प्रभुपाद जी क्या दे रहे हैं, भले ही आधिकारिक रूप से मतलब व्यवहारिक रूप से लोग एक मत हो लें किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं, सेपरेट इंटरेस्ट। अब दूसरा शब्द क्या हो गया, अपृथक धर्मा के लिए सेपरेट इंटरेस्ट। सेपरेट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एक इंटरेस्ट, एकता भगवान से होनी चाहिए, भगवान से एकता। एक तो मायावादियों वाली एकता है, एक भक्तों वाली एकता है। भक्तों वाली भगवान की एकता कौन सी है, सेम इंटरेस्ट। एक पृथक इंटरेस्ट, एक सेम इंटरेस्ट, तो उसमें उनका स्वार्थ होता है और भक्त का स्वार्थ नहीं होता है। तब वो एक श्लोक और पढ़ना चाहिए कि बाकी सबको नहीं मिलता है, भगवान संतुष्ट होता है, भक्तों से होता है, तब कौन सा श्लोक याद आना चाहिए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव अशांत अतएव शांत। निष्काम है इसका मतलब कोई सेपरेट इंटरेस्ट नहीं, बाकी सबको सेपरेट इंटरेस्ट है। तो अभी तक जो कह रहे हैं दूसरों संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, भक्ति के अलावा और साधन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए पुष्टि करते जाना चाहिए। मतलब ये एक ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर एक सर्कल ऐसे सेट होता ना जाना चाहिए। आप एक एक शब्द पढ़ते हो तो उसके साथ कुछ उस चीज को उसका स्पष्टीकरण करते जाए। तो उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट, दुनिया वालों का सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। और फिर प्रभुपाद उदाहरण किसका दे रहे हैं, उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आशंकाएं होती हैं, अतः उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। यूएनओ की बात कर रहे हैं, हर एक राष्ट्र का अपना इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, तो फिर साथ कैसे होंगे। व्यवहारिक एकता दिखा रहे हैं लेकिन वास्तविक एकता नहीं। तो वास्तविक एकता कहां हो सकती है, व्यवहारिक नहीं हो सकती है, पूरी दुनिया प्रयास कर रही है लेकिन एकता नहीं हो रही है। तो वास्तविक एकता कहां हो सकती है, तब प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावना अमृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों तथा यहां तक ठीक है, क्योंकि भौतिक जगत में रह रहे हैं इसलिए हम सबके सेल्फ इंटरेस्ट हैं। भौतिक जगत में रह रहे हैं, भौतिक शरीर है, तो भौतिक इंटरेस्ट भी सेपरेट है, ये प्रभुपाद जी मान रहे हैं। इसको कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने जब कहा कि मन को वश में करना मुश्किल है, तो भगवान ने क्या कहा, अरे तुम मूर्ख हो, तुम मन में वश नहीं कर सकते, ऐसे बोला क्या, हाँ क्या कहा, असंख्यम महाभाव मनो दिल, अरे सच कह रहे हैं वो, कोई संशय नहीं है, मन बहुत मुश्किल है वश में। अर्जुन कहा, ये मेरी बात मान रहे हैं, अच्छा है। अब क्या है, उसने सुनने के लिए भगवान ने उसका दरवाजा खुला रखा कि अब सुन लेगा, नहीं तो पहले ऐसे डांट दिया होता तो अर्जुन कुछ भी भगवान कहे तो कुछ नहीं सुनता, ये नेचर है। तो प्रभुपद कहते हैं ऐसे कृष्ण भावना में भी, क्योंकि अलग लोग हैं तो अलग विचार हैं, अलग मत हैं, लेकिन फिर एक शब्द लिख रहे हैं, वो सावधानी का है। ये विविधता इतनी प्रबल है, इसको कहते हैं खोपरी खोपरी मत न्यारी, खोपरी 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 इसको कहते हैं, खोपरी है ना, मत न्यारी, मत का मतलब विचार, हर एक का अपना विचार है इस दुनिया में, खोपरी खोपरी मत न्यारी, सबका विचार अपना है। और अब एक शब्द लिख रहे हैं, इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावना अमृत संघ में कभी कभी, इसका मतलब हर समय नहीं होना चाहिए, कभी कभी का मतलब हर समय नहीं, कभी कभी, once a while, भिन्न मतों एवं विचारों, भिन्न मत और विचार कोई बात नहीं, भिन्न मत ये है कि आज रसगुल्ला भोग लगाना है, दूसरा कहे नहीं आज रबड़ी लगानी, कोई बात नहीं, ये भिन्न मत में कोई परेशानी नहीं है। ये विचार में मुझे आता ही रसगुल्ला करना है तो मैं काहे के रबड़ी बनाऊंगा, ये मत हो तो कोई परेशानी नहीं। तथा भौतिक स्वार्थों की प्रति झुकाव के कारण, ये आखिरी वाला शब्द भारी है। मत अलग हो कोई बात नहीं, विचार अलग हो कोई बात नहीं, मैं पुस्तक वितरण करने माल में जाऊंगा चले जाओ, मैं घरों में जाऊंगा चले जाओ, भले विचार अलग है हमें कोई आपत्ति नहीं, पुस्तक वितरण करना है इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो है भौतिक स्वार्थों की प्रति झुकाव के कारण, भौतिक स्वार्थ कैसे हो जा, भौतिक स्वार्थ कैसा हो जा, उसके लिए झुकाव कैसे हो जाएगा। आज मंदिर में सबको मोबाइल दिया जा रहा है, अरे मेरे को स्मार्ट वाला चाहिए, मेरे को ये नंबर वाला नहीं चाहिए, ये भौतिक हो गया कि नहीं हो गया। कोई चीजें बट रही है तो मेरे को कौन सी चाहिए, वो भौतिक चीजों की तरफ झुकाव। और ये आजकल ऐसे प्रायः ज्यादा ही देखा जा रहा है झुकाव भौतिक चीजों की। और अच्छी तरह से देख लो, आज से 40 साल पहले 30 साल पहले सन्यासी लोग भी चटाई पे सोते थे इस्कान के अंदर, कोई सुविधा नहीं थी, और कोई विशेष सुविधा कोई नहीं थी, सामान्य से जैसे जीवन था। तो प्रचार में प्रबलता थी, अब सुविधाएं ज्यादा हो गई हैं, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, इसलिए झुकाव भौतिक चीजों की ओर ज्यादा हो रहा है कि ये मेरे पास ज्यादा होनी चाहिए, ये मेरे पास ज्यादा होनी चाहिए। ये अलगाव जो है, ये अलगाव ठीक नहीं है। विचारों का अलगाव कोई बात नहीं, मत का अलगाव कोई बात नहीं, क्योंकि कमरे सेवा तो भगवान की ही करनी है। लेकिन ये जो भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है, ये पद प्रतिष्ठा आता है इसमें, भौतिक में इसमें आएगा पद प्रतिष्ठा। ये भक्ति के क्या है, भक्ति की लता के साथ उगने वाले, ये दूसरा घास है, ये उसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। असल में करने भक्ति जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें और साथ में उग जाती हैं तो भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती है, तो मतभेद हो जाता है। भौतिक सुविधाओं की और झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं वस्तुतः का मतलब इनफैक्ट, कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता, कृष्ण भक्ति में दो राय हो ही नहीं सकती। अरे भाई इतने सारे भक्त हैं, चाहे किसी के ऊपर लड़े, हरे कृष्ण जपने के ऊपर किसी का झगड़ा है क्या, हाँ कोई झगड़ा है कि हरे कृष्ण जपना है, तुम ज्यादा क्यों जप रहे हो, तुम कम क्यों ज्यादा क्यों जप रहे हो, जोर से क्यों जप रहे हो, कोई लड़ता है आपसे। यहां सुबह में देख रहा था एक तो ऐसे जप रहा है हरे कृष्ण ये सन्या बहुत कोई योगी हो पुराने, और एक हरे कृष्ण हरे विष्णु कृष्ण कृष्ण ऐसे कर रहा। आप किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, जैसे चाहे वैसे करे, अरे हरे कृष्ण जी तो जप रहा है ना। तो कृष्ण भावना में कोई मतभेद नहीं, प्रभुपाद जी कहते। मतभेद कब आता है, जब आसन बड़ा छोटा हो गया, बड़ा आसन इसको दिया इसको छोटा हो गया, तो दिमाग में विचार आ गया, इसका 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 इससे इससे बचने का साधन क्या है, ये भौतिक चीजों की ओर झुकाव से बचने का साधन क्या है, क्या करना चाहिए, कौन सा श्लोक रोज पढ़ के याद करना चाहिए इन चीजों से बचने के लिए, हाँ न धनम न जनम न सुंदरम, इससे पहले वाला तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु, ये निम्रता वाली भाव को बनाए रखना चाहिए, भगवान मुझे जैसे रखे उसमें मुझे राजी रहना है, मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, इस छोटी चीजों के लिए मैं कृष्ण की भक्ति को क्यों छोड़ू, भाई विरोध कर रहा हूं इसका मतलब भक्ति से भगवान से विरोध, आपस में झगड़ा है तो भगवान को, ये तो ऐसे है कि भगवान के दो पांव पांव दबा रहे थे और आपस में उनका झगड़ा था तो भगवान का एक पांव दूसरे की तरफ चला गया, तो उसको चिमटी मार रहा है, तुम्हारा पांव मेरे पास क्यों आया, अरे पांव किसके वो चिमटी मार रहा है, हा? तो दर्द किसको हो रहा है, भगवान को, अरे तुम्हारे राइट मेरा नहीं है, फुट तुम्हारा है, उठाओ ले वो तुम्हारा वापस ले लो तुम्हारा, तो दर्द किसको हो रहा है, तो कृष्ण भावना में अगर विचार में मतभेद हुआ तो कष्ट होता है प्रभुपाद जी को, और कष्ट होता है परंपरा, और कष्ट होता है कृष्ण को और गौरंग महाप्रभु को। ये आपस में लड़ रहे हैं लेकिन चूंटी मुझे मार रहे हैं। तो इसलिए कैसे द्वंद्वातीतो विमत्सरः, कौन सा श्लोक पूरा कैसे है, यद लाभ संतुष्टो, यद ऋच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। ये भगवत गीता का श्लोक है। हर हालत में जो मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिला जो संतुष्ट होना चाहिए। और इससे भी ऊपर का स्तर है अयाचक रहना। अयाचक भक्त हो, अयाचक साधु हो तो वो भगवान बहुत प्रसन्न। अयाचक का मतलब कुछ मांगने वाला नहीं, भगवान की इच्छा से आ गया तो आएगा। अयाचक कौन था, माधवेंद्रपुरी। और सुधामा अद्भुत अयाचक था, मांगने गया और मांगा ही नहीं, गया मांगने और मांगा ही नहीं। भगवान इतने परेशान हो गए कि घरवाली ने भेजा है मांगने और ये चुप साध के बैठा है, बोलेगा नहीं, क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा लाया क्या है मेरे लिए, भगवान ने मांगा, भगवान मंगता बन गए कि मेरे लिए क्या लाए। वो सुधामे ने नहीं मांगा, भगवान मांगने वाला हो गए। तो अयाचकता अंदर आ जाए, ये भाव आना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भाव न मांगने वाला आए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में कोई वस्तुतः कृष्ण भावना में द्वैत नहीं रह सकता, वहां एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति कृष्ण की सेवा करना। यथाशक्ति का मतलब जिसमें जो सामर्थ्य वो सेवा करे, चाहे झाड़ू लगानी करे चाहे पुजारी जी करे, लेकिन कर तो कृष्ण की सेवा रहा है। इसलिए कोई मतभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं हो सकता है। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। इसका मतलब क्या, मैं पुजारी करूंगा, पुस्तक वितरण नहीं जाऊं, तो ये भौतिक नहीं है, दोनों आध्यात्मिक है, इसको आध्यात्मिक समझना चाहिए। अगर ये भक्तों के अंदर आपस में मतभेद हो रहा है कि मैं सेवा ये नहीं वो करूंगा, लेकिन सेवा ही तो मांग रहा है ना, तो भाई भक्ति तो नहीं छोड़ रहा है, तो ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक नहीं है। और भौतिक क्या था, इससे पहले था वो भौतिक था। तो दोनों का यहां प्रभुपाद ने विश्लेषण कर दिया है कि सेवा में मतभेद हो तो कोई बात नहीं, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, वो आध्यात्मिक है, क्यों काम तो सेवा का कर रहा है ना। कभी कभी कुछ लोगों का ऐसे आसक्ति होती है कि मैं यही सेवा करूं, तो उसी को वो सेवा करने देनी चाहिए। और दूसरी सेवा में लगाना है तो भी बड़ी बुद्धिमानी से लगाना चाहिए, बड़ी बुद्धिमानी से लगाना चाहिए कि उसको ऐसे ना लगे कि मेरी सेवा बदली जा रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत संग आर्मी डिसिप्लिन है, मिलिट्री की तरह, गाड़ी चलाओ यस सर, बंदूक चलाओ यस सर, कुछ भी करो यस सर। कृष्ण भावना की शिक्षा ऐसे थी। एक जमाना था ब्रह्मचारी रात को सोया होता था, सन्यासी कहता चलो प्रचार करने, वो बेचारा ऐसे ही बिस्तर को उठा के चलता था, ये नहीं पूछता था कहां जाना है, कहे जाना है कैसे जाना है पता नहीं, चलो चलो चलो। ऐसा एक ऐसा जमाना था कि उसमें सेवा कोई भी बोली जाए सेवा करनी, हमें क्या, हम तो सेवा के लिए जो बोलो वो सेवा करेंगे। लेकिन सेवा में मतभेद है तो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। और भौतिक इच्छाओं की प्रबलता की तरफ झुका है तो समस्या है। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते, किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकते। जो भक्ति में लगे हुए हैं किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकते। कृष्ण भावना में लगे हुए किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकते। किसी भी परिस्थिति का मतलब किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकते। किससे अलग नहीं हो सकते, सेवा से, किसकी, कृष्ण की। वो कहीं भी रहें कैसे भी रहें लेकिन कृष्ण सेवा से अलग नहीं हो सकते। वास्तव के रूप में अगर भक्ति में लगे हुए तो कृष्ण सेवा से अलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे कि इस श्लोक में इंकित किया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन वृत्त के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। भगवान वर देने, क्या वर मांग रहे हैं आप इसको पढ़ना, एक ही वर मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, किसी को ध्यान है? आपके भक्तों का संग। ये श्लोक 40 के बाद है शायद, कहीं आएगा। एक ही बात मांग रहे हैं कि हमारे कर्मों के कारण हमें कहीं भी जन्म लेना रहे हमें उसकी चिंता नहीं है, हमारे को आपके भक्तों का संग मिले। और फिर कहते हैं भक्तों के संग का क्या लाभ होगा, कहते भाग आपकी कथा सुनने को मिलेगी। और फिर कहते हैं आपकी कथा लव मात्र मिले तो स्वर्ग और मुक्ति से भी मोर और महान है। लवेन अपि, ये मुख्य श्लोक जो है, ये श्लोक इसमें आगे आते हैं। तो वर क्या मांगना चाहिए, वही जिसके कारण छोड़ के जा रहे हैं वही वर मांगना है। भाई झगड़ा करके छोड़ के मंदिर से जा रहे हैं, भगवान वर देना चाहें तो वर क्या मांग रहे हैं कि भक्तों का संग तो छोड़ के क्यों जा रहे हो फिर अगर वर मांगना है तो यही एक, और पूरी भागवत में सबने यही वर मांगा है, एक से बाद एक, भगवान के दर्शन के बाद, भगवान के मिलने के बाद सबने भगवान के भक्तों का संग मिले इसका वर मांगा है। तो समान धर्म है भक्तों का संग, और भक्तों के संग में एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे की सेवा में सहयोगी। और सेवा हमारा स्वधर्म है, उसको कभी छोड़ना नहीं है, वो आध्यात्मिक है। बाकी भौतिक मतभेदों को तपस्या से और त्याग से छोड़ देना चाहिए, तो फिर समान धर्मा होके कृष्ण भावना अमृत संघ हर एक गांव में और शहर में चेतना महाप्रभु की इच्छा के अनुसार। अभी बहुत दूर तक हमको जाना है तो बहुत से गांव और शहरों में इस काम को करना है, इसलिए समान धर्मा रहकर सेवा के भाव में युक्त होकर। सेवा के भाव दो ही प्रकार के भाव हैं, सेपरेट इंटरेस्ट वन इंटरेस्ट, और दो भाव हैं, सेवा का भाव और भोग का भाव, एंजॉयिंग मेंटेलिटी एंड सर्विस एटीट्यूड। तो सर्विस एटीट्यूड है समान धर्म और एंजॉयिंग मेंटेलिटी है पृथक भाव। तो एंजॉयिंग मेंटेलिटी का त्याग करना है, एंजॉयर भगवान है तो हम उसके सेवक हैं, और जो उसकी सेवा कर रहे हैं उनका सहयोग करना है। कैसे सहयोग करना है, विचारों में मतभेद हो कोई बात नहीं, सेवा में मतभेद हो कोई बात नहीं, लेकिन भौतिकता का विचार आ जाए तो उसको बचाना चाहिए। और विचार सब में आएंगे, ऐसा नहीं नहीं आएंगे, सब में सेल्फिशनेस आएगी। अच्छे भक्तों के संग से हम उससे बच सकते, वो हमको इन विचारों से बचा लेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। परपट पूरा हुआ कथा पूरी, किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कुछ जो लिखा था वही पढ़ा हमने, कुछ और नहीं बोला ना। आपको क्या कुछ पूछना है, किसी को कुछ कमेंट, कोई क्या आपको क्या अच्छा लगा, कौन सोया कौन जागा क्या प्रश्न है बच्चे, क्या नाम है? विठल, तो खड़े हो जाओ ना नाम है विठल और बेटा है भाई बोलो विठल जी।
जैसे प्रभु जी आपने इस श्लोका के शुरुआत में बोला कि प्रभुपाद जी का परपट है वो कैसे पढ़ना चाहिए, तो आप जैसे बोले कि जैसे उसका वर्ड टू वर्ड का जानना चाहिए, उसका कनेक्शन देखना चाहिए, लेकिन ऐसा करते जाएंगे तो टाइम बहुत लगता है।
हमको तो 2 मिनट लगते हैं सबसे ज्यादा से ज्यादा, अगर अभ्यास हो जाएगा तो। अब श्लोक पढ़ते समय हम ऊपर नीचे देख के सब समझ लेते हैं, कोई इतना देर नहीं लगता है उसमें। और ऐसे नहीं करेंगे तो सारी उम्र, और हमको करना कौन सा, कौन सी फैक्ट्री चलानी कोई दुकान मकान चला, यही तो काम करना है एक, तो इसको ही ठीक तरह नहीं करें तो फायदा क्या। अरे ये एक श्लोक रोज का पढ़ना है, उसको अच्छी तरह से पढ़ने में कौन सा खर्चा लग रहा है, उसके शब्दों को और उसके अर्थ को बिना देखे याद करना चाहिए। और हमने पहले कई बार आपको कहा भी होगा कि 90% शब्द आपकी भाषा में है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन उन शब्दों को श्लोक के अंदर कैसे रखे हुए हैं, अनुवाद में प्रभुपाद ने कैसे रखे हैं, उसका भाव क्या है, इसके ऊपर 5 मिनट ज्यादा लगते हैं मेंटल एक्सरसाइज के, 5 मिनट लगते हैं। लेकिन वो करोगे तो आप समझ के पढ़ाए, और नहीं तो फिर क्या है, मैकेनिकल हो जाएगा सारा, वो मैकेनिकल हो जाएगा ना, वो स्टिक नहीं करेगा माइंड में। मैं वर्ड टू वर्ड अगर ऐसे पढ़ता ना मैकेनिकल हो जाता। लेकिन आप सबने इसका अर्थ तो समझ सामने पढ़ा है ना, वरम वृणिध्वम भद्रम, वो सबका शब्द है, वो का मतलब आप, बाकी सबका शब्दों का अर्थ आ रहा है ना, वृणिधम वर्ण करो, वर्ण करो मुझसे ले लो, ग्रहण करो, फिर यूयम आप, नृपनंदन राजपुत्रो, फिर सौहृदय अर्पृतिक धर्म, आप एक दूसरे के शुभ चिंतक हो, एक दूसरे के सहयोगी हो, आपका धर्म अलग नहीं है, आप भक्ति कर रहे हो, तुष्ट हो, मैं आपसे संतुष्ट हो गया, और आपके सौहृदन और आपके सौहृदय के कारण मैं आपसे संतुष्ट हो गया हूं, आप मुझसे कोई भाव, आपका कल्याण हो, आप भद्र वो आपका कल्याण हो। अब ये शब्द आपको सारा दिन आपके दिमाग में घूम सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। असल में सब सबको ये श्लोक है ना, एक छोटा सा, लोग कभी कभी कार्ड देते हैं ना मुफ्त में आपको, किसी काम का नहीं तो उसके पिछले तरफ ये श्लोक लिख लिया करो, और जेब में रखे एक दिन कम से कम रात की भोजन तक उसको 5-7 बार देख लिया करो, तो कम से कम वो श्लोक आपके दिमाग में अटक तो जाएगा कि आज हमने क्या पढ़ा। नहीं तो 1 घंटा पूरा हमने यहाँ पापड़ बेले और बाद में पले कुछ नहीं पढ़ा, तो फायदा क्या, कोई लाभ नहीं है ना उसका। तो इतना थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, इसका कोई इसमें खर्चा तो नहीं लग रहा कुछ, ये परपट के अंदर हमने कुछ कहा आपको, कुछ इसमें कुछ परेशानी की बात थी क्या? लेकिन उन शब्दों को थोड़ा खोलो तो सही, प्रभुपाद ने लिखा क्या है, क्यों लिखा है, कैसे किस भाव से लिखा है। एक भौतिक एकता है, एक आध्यात्मिक एकता है, दोनों का अलग बता दिया। भौतिक एकता हो नहीं सकती है क्योंकि उसका स्वार्थ है, और आध्यात्मिक एकता हो सकती है क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है, और स्वार्थ भौतिक स्वार्थ और फिर आध्यात्मिक स्वार्थ सेवा का, तो ये इसका विभाजन करके अपने दिमाग में एक परपड़ एक पेज का है, एक दिन में अध्ययन करने में थोड़ा सा सब, यानी प्रवचन देने वाले को नहीं, सुनने वालों को भी इस एक को ही पक्का कर लेना चाहिए एक दिन में। तो इतना तो कैश अपने पास होना चाहिए ना, ऐसा नहीं ये भी उधार पे चला जाए आज कैश अपने पास रखना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए बेटा, और कोई हमारा काम नहीं है, यही तो काम है, और इसी में ही कच्चे रहें तो फिर फायदा क्या। और किसी को कोई, हाँ बोलो प्रभु जी, समय हो गया है वैसे, बोलिए, भूख नहीं लगी है तो बात करो।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपके सुंदर प्रवचन के लिए। प्रश्न ये है कि प्रभु जी, हम देखते हैं कि भक्तों के संग के समय हमारे नेचर थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, और लाइकिंग सर्विसेज में लाइकिंग में डिफरेंसेस रहता है, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो शास्त्रों में बताते हैं भक्तों का संग करने के लिए, लेकिन वास्तविक में कभी कभी लगता है कि भक्तों के संग करते समय डिफरेंसेस और बढ़ जाता है, मतलब। तो भक्तों के संग करते समय हमें क्या, मतलब क्या, किस तरह हमें करना चाहिए, और उसमें नेचर में हमको, मतलब इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ।
भक्तों का संग करना चाहिए मधुमक्खी की तरह, हर एक के अंदर मधु को ढूंढना चाहिए, कांटे वाले पेड़ के अंदर भी मधु होती है। कुछ भक्तों के अंदर हो सकता है कि स्वभाव थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन क्योंकि कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो कुछ न कुछ अच्छे गुण उसमें हैं। संग में गुणग्रही होना चाहिए, सबके अंदर अच्छाई ढूंढो, और वो अच्छाई आप उस अच्छाई को पकड़ लो, और उसके अंदर दोष क्या है ये आपका काम नहीं है देखना, ये दोष देखना उसके अधिकारी का काम है, उसके गुरुजनों का काम है, हमारा काम नहीं। भक्तों का दोष देखना हमारा काम नहीं, भक्तों का दोष देखने का अधिकार किसको है भाई, अधिकार है जो उसका अधिकारी है, डिपार्टमेंट हेड का काम है अपने डिपार्टमेंट के भक्त में कोई त्रुटि है तो उसको सुधारे। दोष उसमें देखना चाहिए जिसको सुधारने का सामर्थ्य हो, अगर सुधार नहीं सकते हो तो मत देखो, देखोगे तो आप परेशान होगे और सामने वाले को परेशान करोगे। गुणग्रही बनो, हर एक के अंदर गुण देखो, और गुण के आधार के ऊपर मैत्री बनाओ। दोष आपका देखने का अधिकार नहीं है, दोष देखने का अधिकार पिता को अपने पुत्र में है, पति को पत्नी में है, राजा को प्रजा में है, गुरु को शिष्य में है, तो वो अपना दोष देखता है क्योंकि उसको सुधारना चाहता है, और हम दूसरे को दोष देख के द्वेष करें उसका कोई फायदा नहीं। तो गुण ग्राही होना चाहिए, मधुमक्खी की तरह भक्तों के अंदर गुण देख लो कौन सा है, उसी के आधार के उससे मैत्री रखो। फिर भी तीसरे स्कंद में भक्तों की गुणों का प्रभाव के कारण कुछ तमोगुणी प्रति के प्रवृत्ति के भक्त होते हैं जो थोड़ी बात पे झगड़ा करते हैं, उनको दूर से नमस्कार करना चाहिए और उनसे ज्यादा बहुत निकट नहीं होना चाहिए। रजोगुणी भक्त होते हैं, लोभी लालची होते हैं, तो उनसे भी दूर से नमस्कार करना चाहिए। ऐसा क्यों भक्तों के, तो रूप गोस्वामी ने ऐसे नहीं कहा सबको बराबर कर रहे हैं, वो किसी को प्रणाम करना है, किसी को नमस्कार करना है, किसी का संग करना है। तो संग करने की मुख्य बात है, संग मतलब जहां कथा सुनने को मिले। संग की परिभाषा है हरी कथा, संग की परिभाषा सिर्फ हरी कथा है और कोई नहीं। तो हरी कथा किससे सुननी चाहिए वो संग है, बाकी ये संग है कि बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट में साथ बैठ के दूध पीना, ये संग नहीं। अरे ये संग नहीं। तो गुण ग्रही होंगे तो संग का लाभ होगा। सब में कोई ना कोई गुण भगवान ने रखा है और सब में दोष भी है, तो दोष भगवान ने दोष नहीं देखा किसी में, पूतना में भी दोष नहीं देखा, प्रभुपाद ने किसी हिप्पी में दोष नहीं देखा, उनके अंदर गुण देखा तब इतनी बड़ी संस्था बन गई। तो ऐसे हमको दोष नहीं देखना चाहिए, गुण ग्रही होना चाहिए। दोष देखने वाले को बोलते हैं सूयते, इसका मतलब लोगों के दोष देख रहा है, तो आपको अनुसूय बनना चाहिए, किसी में दोष नहीं देखना चाहिए, अनुसूय। ये भक्तों के लक्षण में अनुसूय। अर्जुन तुम अनुसूय है इसलिए तुम्हारे को मैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान दे रहा हूं, नवे अध्याय में है ना अनुसूय भी, इसीलिए आप इसके दिव्य ज्ञान को लेने के अधिकारी हो। एक और हाथ ऊपर था, बोलो प्रभु जी। ये वरदा है क्या ना, क्या
वरदराज दास?
मैं ये वर देने वाला यहाँ बैठा है, आप सब इधर किताब में उधर उधर ढूंढ रहे हो, ये है वरदराज। हाँ वरदराज जी, वरदराज दास। हाँ
प्रभु जी, इस परपोट में प्रभुपद लिखते हैं भौतिक लोगों के अंदर जो यूनियन होता है वो भी एक हो नहीं सकता क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग अलग है, तो भी एक मतभेद है। और फिर बाद में प्रभुपद अपने आध्यात्मिक मतभेद के बारे में लिखते हैं कि भक्तों में भी सेवा करने के बारे में या किसी भी मतभेद होता है मगर वो आध्यात्मिक है। तो हमारा जब कब मतभेद होता है, तो हमारा आध्यात्मिक है कि भौतिक है, ये इसको कैसे हम पहचाने?
उसके लिए प्रसाद बांटना चाहिए, अगर खाएं तो आध्यात्मिक है और झगड़ा करें तो भौतिक है। आप जिससे मतभेद हो उसको प्रसाद दो, अगर खाता है तो आध्यात्मिक है, नहीं लेता है तो भौतिक है। क्योंकि प्रसाद कभी भक्त छोड़ेगा नहीं, इसका मतलब अभी तक वो आध्यात्मिक है, और उसने प्रसाद नहीं लिया इसका मतलब भौतिक है। ये रूप गोस्वामी के वो एक आदमी उनके सामने से गया ध्यान में, तो कहा कि प्रसाद खिलाओ, जो नहीं खाने आया गया वो भौतिक नाराज है। तो वो ऐसे प्रसाद ही सबसे ज्यादा प्रबल साधन है, आप जैसे मतभेद हो उसको प्रसाद दो या साथ प्रसाद खाने का प्रयास करो। साथ प्रसाद खाता है तो आध्यात्मिक मतभेद है, नहीं खाता है झगड़ा करता है तो भौतिक है, तो फिर उसको सुधारने का प्रयास करो। हमारा तो ये अनुभव, प्रभुपाद एक जगह कहते हैं इफ वी टेक प्रसाद टुगेदर देन द ऑल डिफरेंस विल बी रिकनसाइल्ड, प्रसाद साथ लेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रसाद बहुत प्रबल साधन है सब मतभेद को मिटाने के लिए, झगड़ा भी हो तो प्रसाद। प्रसाद मंदिर का आप हमेशा डब्बा प्रसाद का साथ रखो, मतभेद नजर आए प्रसाद निकालो, सब मतभेद खत्म। नहीं
मैं हमारी ये बात बराबर है, मैं हमारी तरफ से देखने का कोशिश कर रहा था कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारे मतभेद है, तो हम आध्यात्मिक स्तर पे मतभेद रख रहे हैं कि भौतिक स्तर पे मतभेद रख रहे हैं, इसका चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमको लगता है कि मैं भगवान की सेवा के लिए ही मैं जो मतभेद कर रहा हूँ या मैं जो डिफरेंस ओपिनियन है मेरा वो भगवान की सेवा करने के लिए है, मगर उसका जो परिणाम होता है हमारा वो भक्ति के जैसा नहीं होता है, कि लगता नहीं कि हम मतभेद रख के भक्ति में प्रगति कर रहे हैं।
इसलिए दो के अंदर मतभेद हो तो तीसरा, उस दोनों को समझाने के लिए तीसरा होना चाहिए जो देख ले के ये भौतिक है कि आध्यात्मिक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है स्वयं को, तो तीसरे को बताना चाहिए कि तुम्हारा ये भौतिक है इसको छोड़ दो। तो ये काम होता है गुरुजनों का, वो बताते हैं कि ये भौतिक है, एक दूसरे को प्रणाम करो, खत्म करो। तो बहुत से प्रयास ऐसे सुलझ जाते हैं, लेकिन भौतिक होगा तो आज नहीं तो कल टूटेगा ही टूटेगा। आध्यात्मिक होगा तो कितना भी प्रयास करो नहीं टूटेगा, कितना भी तोड़ने के कारण हो लेकिन नहीं टूटेगा, क्योंकि वो हम भक्ति नहीं छोड़ सकते, भक्तों का संग नहीं छोड़ सकते कुछ भी हो। लेकिन है मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा है भौतिक शरीर है और इच्छाएं प्रबल हैं, इसलिए ये सब संभव है, लेकिन फिर भी अगर हम दृढ़ संकल्प हैं भक्ति में तो इन सब चीजों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन है बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं। वैसे अगर किसी से मतभेद है और आपका जब ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ भौतिकता इसमें आ गई है। अगर मत जब ठीक हो रहा है तो इसका मतलब आध्यात्मिक है। दूसरा ये है कि आपके साधन में कोई त्रुटि आ रही है, इसका मतलब भौतिक कोई बीच में कारण है इसलिए रुकावट हो रही है। और अगर साधन में कोई परेशानी नहीं है तो इसका मतलब आध्यात्मिक है, कोई परेशानी की बात नहीं। और वैसे भी सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, आपको लगता है कि इससे मेरा मतभेद हो रहा है तो परमात्मा को सीधी प्रार्थना करो कि मेरे हृदय में इसके लिए कोई बुराई नहीं, मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर भगवान की सेवा करें। और ऐसे आप दो दिन तीन दिन पर भगवान को डायरेक्ट प्रार्थना करो, अंदर में बैठे हुए परमात्मा, उसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा उसको कहेंगे ये तुमसे कोई मतभेद नहीं कर रहा है, आप झगड़ा छोड़ो, जाके प्रणाम करो और आपसे वो आपके अपने आप मिल जाएगा, ये भगवान सबको सुलझा लेंगे। उसको प्रार्थना करनी चाहिए अगर ऐसा स्थिति हो तो, क्योंकि भगवान उसके हृदय में परमात्मा के रूप में है ना, यही तो डायनामिक्स है एक्चुअली भक्तों को साथ चलाने का। भगवान भगवान उसके हृदय में उसको प्रेरणा देगा कि इसके हृदय में तुम्हारे लिए कोई भी बुरा विचार नहीं है और तुम दोनों ऐसे, हमने प्रयास कई बार करके देखा है मैनेजमेंट में, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है, हमारे भाव को ही समझता है, सामने वाले के भाव को ही समझता है, और ये सबसे अच्छा साधन है सब मुश्किल में डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने का। भगवान को प्रार्थना करो तो भगवान उसके मन को बदल देगा और हो जाता है, हो जाएगा, करके देख लो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, शिल प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की।